सत्यार्थ प्रकाश के सातवें सम्मोल्लास के चैप्टर 7 के आज सातवां भाग है। हम उस पर चर्चा कर रहे थे प्रार्थना पूजा की और पूजा का क्या महत्व है, ईश्वर भक्ति का कैसे किया जाता है, उसका फल कैसे मिलता है। उस प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे प्रार्थना स्तुति प्रार्थना और उपासना की। उपासना के प्रसंग में आपने सुना उपासना का अर्थ होता है ईश्वर को पास अनुभव करना। वो तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, उसको जो रियलाइज करना अनुभव करना यही है उपासना। उपासना का लिटरेरी अक्षरशः अर्थ है पास बैठना या पास पास होने का अनुभव करना। और उसके लिए आपको अष्टांग जो योग की चर्चा आई पतंजलि की, उसके द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले यम की चर्चा आपने सुनी, पांच तरह की अपने आप को समाज के साथ जब हम अपने आप डील करते हैं तो उस समय जो जो रिस्ट्रिक्शंस हमें अपने ऊपर लगानी चाहिए, हमारी प्राकृतिक विकृतियों को कंट्रोल करने की जो जरूरत है इसको यम कहते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की मानसिकता न बनाना। दूसरे प्रसंग में नियम आता है। नियम का मतलब उन व्यवहारों से है जिनका जिनके साथ हमारे खुद का खुद के साथ जब हम डील करते हैं तो जिस तरह के व्यवहार हमें करना है। यम के जो पांचों नियम आपने पढ़ा वो हैं जिनका संबंध मेरा और समाज के साथ होता है। और नियम के में जो पांच आप समझते हैं वो जिसके साथ मैं खुद डील करता हूं, जिसमें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच का मतलब सफाई रखना, शरीर को भी, अपनी बाहरी दुनिया को भी, अंदर की दुनिया को भी। वो भी ईश्वर भक्ति का एक साधन है जो हम भूल जाते हैं। इवन अगर आप तीन चार दिन नहीं नहाते हैं, कपड़े बदलते नहीं है, तो भी आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता आपको। और जिस दिन आप दो तीन दिन के बाद जब आप नहाते हैं जो, तो आपको कितना फ्रेश फील होता है आप खुद जानते हैं कि आप अपने आप को कितना फ्रेश पाते हैं। और जिस दिन आप गंदा होते हैं आपको फील होता है कि आपके कपड़े गंदे हैं, आप नहीं नहाए, बदबू आता है, तो आपको कैसे लगता है। और जब डेली लाइफ में भी हम अगर साफ नहीं होते हैं तो हमें बेचैनी होती है, परेशानी होती है। तो ये तो बड़ा ईश्वर भक्ति बहुत ही सूक्ष्म व्यापार है, बड़ा शटल एक्टिविटी है, उसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। अगर माइंड ज्यादा प्योर नहीं होगा तो नेचुरली हम फिर उस यात्रा पर नहीं निकल सकते। और शौच दो तरह की, बाहर और अंदर। बाहर की सफाई ना करने से हम खुद जानते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं प्रॉब्लम्स के मतलब बीमारियों की या पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, इवन हमारे माइंड का भी क्या प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए आप गंदगी में रहते हैं या आपके कपड़े साफ नहीं है कुछ दिनों से, वह आपके शरीर कुछ दिनों से साफ नहीं है, तो आपका मन कैसा होता है वो आप खुद समझ सकते हैं। आप ऑफिस में उतना काम नहीं कर सकते, आप इतने खुश नहीं हो सकते जितना आप साफ होने पर होते हैं। तो ये आपके माइंड को भी मोटिवेट करता है, चेंज करता है। और ये बाहरी सफाई है। अंदर की सफाई और जरूरी होता है। अंदर की सफाई मतलब जब हमारा मन साफ हो, जिसमें दुनिया भर के ईर्ष्या, क्रोध, लालच, मोह, ये सब चीजें, अटैचमेंट, अवर्शन, दूसरे को पाने की चाह, दूसरे को नफरत करना, ईर्ष्या, जलेसी, डिल्यूशन, इल्यूशन, एंगर, दुनिया भर की चीजों जो है वो हमारे मन को बहुत ज्यादा गंदा बनाता है। और गंदे मन के साथ आप कोई भी ईश्वर भक्ति करे या ईश्वर भक्ति छेड़िए, आप किसी से भी भक्ति करिए, किसी से भी प्यार करिए, आप कभी जेन्युइन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मन की सफाई और शरीर की दोनों की सफाई बड़ी जरूरी है। अगला है संतोष। संतोष का अर्थ है ये नहीं है कि जो मिला उसमें आप खुश हो जाइए, इसका अर्थ यह है कि जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप ला सकते हैं, जितना आप कमा सकते हैं, उस सामर्थ्य से जितना मिला उतने में खुश रहने की कोशिश करना। हमारी समस्या है कि हम अपने आप को या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जो लोग अपने आप को सही रियल एस्टिमेट करते हैं वो संतोष उनको अपने आप मिलने लगेगा। हमें अपना एस्टिमेशन खुद करने की जरूरत है। हम जब खुद को एस्टिमेट करते हैं, हम पड़ोसियों के तराजू से करने की कोशिश करते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल के, हम अपने रिलेटिव्स के, हम अपने दूसरे लोगों के कंपैरिजन हम अपने आप को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मैं सारी दुनिया को छोड़ दूं, मैं खुद को खुद के नजर से, खुद की सामर्थ्य से, खुद की एबिलिटी से, खुद की व्यू पॉइंट से अपने आप को जज करूं, अपने आप को देखूं, फिर जो कुछ मुझे मिलेगा मेरे सामर्थ्य से मैं उससे खुश रह सकता हूं। हो सकता है कि मैं एक ही प्रोफेशन में हूं, जिस प्रोफेशन में और 10 लोग हैं उनमें से कोई बहुत बहुत ज्यादा कमाता है, कोई बहुत कम कमाता है, कोई एवरेज है, उसके बावजूद भी मुझे उसमें दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की अपना मन शरीर बुद्धि का अलग अलग यूज है। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि कोई टैलेंटेड कम है या कोई ज्यादा टैलेंटेड है, ये सिर्फ ये है कि हमारी जो ओवरऑल इंडिविजुअलिटी है, जो पर्सनालिटी है, वो ऐसा ही है कि हम बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते दूसरे की तरह, या हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो जो मेरा सामर्थ्य है मैं जब उसी को एक्सेप्ट करता हूं और उस जितना मिला उसमें खुश रहता हूं, वो संतोष है, उसी को कहते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं वर्क राइटसली, अपने जो भी ड्यूटीज है, जो कर्तव्य है, उसको पूरी तरह निभाएं। नीदर रिजेस इन गेन नॉर बी सरोफुल इन केस ऑफ लॉस। दोनों परिस्थिति में अगर नुकसान होता है, अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती है, उसमें बहुत ज्यादा टूटे नहीं, और बहुत ज्यादा सुख आता है उसमें ज्यादा उछले नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, वही व्यक्ति दुख में बहुत ज्यादा टूटता है जो सुख में भी बहुत ज्यादा उछलता है। तो सुख और दुख दोनों व्यक्ति को तोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो संकट आते हैं, जो क्रिसिस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वही सिर्फ इंसान को तोड़ता है। जो खुशी भी आती है, जो अच्छाइयां आती है, वो भी इंसान को तोड़ता है। दुख से आदमी टूट जाता है दीन भावना से, और सुख से आदमी टूटता है अहंकार से। दोनों व्यक्ति को तोड़ता है। जब मेरे पास बहुत कुछ होता है और मैं उस बहुत कुछ को फील करता हूं, उसके कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आता है, मैं उछलता हूं, मैं उसको शो करता हूं, वो व्यक्ति अगर जीवन में कभी थोड़ी सा दुख आता है, कोई ह्यूमिलिएशन होता है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इतना ज्यादा जल्दी टूटता है अंदर से, तो वो फिर डिप्रेशन या 50 तरह के बीमारियों में जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल लाइफ में भी जो बैलेंस बनाते हैं, सुख में दुख में बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम लोगों को सलाह देते हैं कि दुख में धीरज रखो, नहीं, जो सुख में धीरज रखना जानता है उसको सलाह देने की जरूरत नहीं कि वो दुख में भी धीरज रखे। तो जो दोनों में तभी बैलेंस होता है। ईश्वर भक्ति के लिए भी जब तक आपके अंदर, मेरे अंदर वो संतोष का भाव ना हो, संतोष ना होने का मतलब क्या है, मेरा मन हर वक्त फ्लक्चुएट करता है। थोड़ी सी खुशी नहीं हुई तो भी मैं मैं स्ट्रेस में हूं, मैं टेंशन में हूं, मुझे कुछ और समझ में नहीं आता है, मैं उछल रहा हूं, थोड़ा सा दुख भी हो गया तो भी मेरा माइंड फ्लक्चुएट करता है, मतलब मेरा मन हर वक्त ऊपर नीचे होता रहता है। और जब व्यक्ति के अंदर संतोष आने लगता है तो उसमें एक स्थिरता आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, और वो जो स्टेबिलिटी है स्टेट ऑफ माइंड की, वो व्यक्ति को किसी भी काम में बिजी रखने, इन्वॉल्व होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। और खास करके अगर आप ईश्वर भक्ति, ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी संतोष का अर्थ लोग दूसरे अर्थ और एक उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि संतोषी का अर्थ है कि कम काम करो, जो थोड़ी बहुत मिल गया खा पी लो, खुश रहो, बस शांति से रहो, ज्यादा काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी इसीलिए क्लियर करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आइडल बन जाए, आलसी बन जाए बैठे बैठे, क्योंकि थोड़े से गुजारा करने को कहा गया है, संतोष करने के लिए थोड़ा सा गुजारा करना चाहिए, तो बैठे बैठे टीवी देखो, 5-7 घंटे टीवी देखो, बातें करो, गॉसिप करो, ताश खेलो, एंजॉय करो, यही संतोष है। तो इसलिए कहते नहीं, तो बी नॉट आइडल एंड बी ऑलवेज चीयरफुल एंड एक्टिव। एक्टिव होना जरूरी है। अब यजुर्वेद में, ईशावासी उपनिषद में पढ़ते ना, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। अगर चाहते हो कि 100 साल तक जियो तो हर वक्त काम करते रहो, और खाली जीना नहीं, अगर चाहते हो कि तुम 100 साल तक जियो, जीना भी चाहते हो और स्वस्थ होकर जीना चाहते हो, कोई दीन होकर के, किसी के सहारे जीना नहीं चाहते हो, तो एक्टिव लाइफ में रहो, हमेशा एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। करना बुरी बात नहीं है, करने के पीछे जो रिजल्ट के पीछे जब हम पागल होते हैं वो फिर हमें कमजोर करता है। इसीलिए संतोष होने का अर्थ ये नहीं है कि आप लेजी बने, आप आलसी बने, निष्काम छोड़ दें। काम जितना हम लाइफ को बिजी रखें उतना अच्छा है, पर जो मिला उसे संतोष करें। अगला है तप। उपासना का नियम का अगला पर्याय है तप। तप का अर्थ होता है, वैसे तप का सिंपल मीनिंग है कि अपने आप को गर्म करना, हीट करना, इतना तपाना जैसे आग का तप होता है, जब सूरज बहुत ज्यादा गर्मी देता है तो आतप कहते हैं उसको, इतने अपने अंदर गर्मी पैदा करें, इतनी आग पैदा करें कि हर तरह की जो गंदगियां है वो राख हो जाए, साफ हो जाए। तप करने की प्रक्रिया क्या है कि मन को हर परिस्थिति में, सुख में या दुख में, गर्मी में या सर्दी में, अच्छे में या बुरे में, निंदा में या प्रशंसा में, हर परिस्थिति में मन एक जैसा रहे, उसको साधने की जो प्रैक्टिस है, वो जो प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग है कि मैं सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में मेरा मन एक जैसा रहे, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को तप कहते हैं। इसीलिए पहले, आज भी लोग जो अध्यात्म में जाते हैं पहले जंगल की ओर भाग जाते थे, जंगल में साधना, क्यों, कष्ट सहने की आदत डालते थे, शरीर हर तरह के कष्ट को सहे, जिससे कि थोड़ी बहुत कष्ट में बेचैनी ना हो, सुख भी सहे, मतलब सुख में भी उछाल ना हो, तो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में मन एक जैसा रहे, गर्मी में सर्दी में भी एक जैसा रहे, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में मन में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, स्टेट ऑफ माइंड हमेशा स्टेबिलिटी में रहे, इसी को तप कहते हैं। इसका जो बिगड़ा हुआ रूप आजकल आप देखेंगे बहुत सारे, अगर आप कुंभ मेला वगैरह जाते हैं या कभी टीवी में देखते हैं तो आप देखेंगे वहां बहुत सारे अलग अलग तरह के बाबा लोग मिलेंगे, तो देखेंगे एक बाबा खड़ा है एक टांग पर, जी मैं 12 साल से खड़ा हूं, तो एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, मैं जी 15 साल से ऊपर हाथ कर रखा हूं, ये क्या है, ये मैं 12 साल से 18 साल से सिर्फ फल खा के जिंदा हूं, तो वो बकवास है, वो एक गिनीज बुक में नाम कमाने जैसा काम है, मेरा बाल 18 किलोमीटर लंबी हो गई, उसमें कष्ट ही सहना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं, वो भी एक तरह के दुख ही सहते हैं, कष्ट सहते हैं, पर वो एकांगी है, वो वन साइडेड है, मतलब वो जो एक टांग पर खड़ा है उसको थप्पड़ मारो उसको भी उतना ही जोर से गुस्सा आएगा जितना आपको गुस्सा आता है, तो वो 12 साल बेकार किया अपने लाइफ को, कुछ यूज नहीं है। तपस्या का उद्देश्य यह था कि आप अपने शरीर को ऐसे बनाओ या मन को ऐसे बनाओ कि हर परिस्थिति में आपके अंदर कोई भाव में बदलाव ना आए, सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में। और वो जरूरी इसीलिए कि ईश्वर की भक्ति में जब आप जितनी ज्यादा शांत होंगे, अंदर से शांत होंगे, ऊपर से कितना शांत दिखते हैं ये मैटर नहीं करता, शांत होंगे उतना ज्यादा आपका मन लगेगा। अगला है स्वाध्याय। जो सबसे कम, सबसे ज्यादा जो बुरी बात हम लोगों के अंदर है वह कि हम स्वाध्याय से छूटते जा रहे हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना। और उसका परिणाम होता है कि हम ये जो कानाफूसी बातों पर ज्यादा मानने लग जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, कहीं मैंने कुछ देखा, वो तो जी अमुक कह रहा था, आप वो कह रहे हो, हमने जी अमुक जगह अमुक देखा, वो देखा कहा, छोड़ो, तुम जानते कुछ हो तो बताओ जी, हमने ये कहा कहीं से सुना था। पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा जो हिंदू सोसाइटी है वो कानाफूसी और देखा देखी में ज्ञान प्राप्त है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिलेंगे सो कल्ड, जो अपने धर्म के बारे में मोटे मोटे ज्ञान रखने का दावा करते हैं, उनका ज्ञान का एक ही सोर्स है, उन्होंने कहीं देखा और किसी से सुन लिया। और वो इतना हार्मफुल है, हमारे उस नीतिश संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। मूर्ख को समझाना आसान है, विद्वान को समझाना उससे आसान है। ज्ञान लव दुर्विदग्ध ब्रह्मा पितम नरम न नरंजयति। ये जो अधकचरे ज्ञान वाले होते हैं उसको ब्रह्मा खुद आकर भी पैर में गिर के गिड़गिड़ा कर समझाए तो भी नहीं समझा सकता। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं जो अधकचरे ज्ञान वाले सुनी सुनाए ज्ञान को बखानते फिरते हैं। और इसीलिए धर्म में जो विकृति आती है, जो रिलीजन में जितने तरह के गड़बड़ियां आती है, उसका एक ही कारण है, उसको मानने वाले लोग जब सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, खुद कभी पढ़ते नहीं है। आप साइंस में सुनी सुनाई बातों पर नहीं चल सकते, आप आर्ट पर नहीं चल सकते, आप इकोनॉमी पर नहीं चल सकते, आपको कुछ ना कुछ स्वाध्याय रखना पड़ता है। पर सिर्फ धर्म ही ऐसा फील्ड है, खास करके हमारे धर्म में सभी बातें, सारे हमारे पंडित लोग भी वही बोल जाएंगे जो सुनी सुनाई बातें। जिंदगी में कभी रेफरेंस नहीं ढूंढा क्या इसका, सचमुच कोई रेफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता। उसका परिणाम है कि हम सब कुछ जानने के दावा करने वाले लोग सचमुच खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये गोरे लोग आपके बारे में आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, आपकी चीजों के बारे में। तो स्वाध्याय से आपको सत्य का ज्ञान होता है, सही किताब पढ़ने से। जो पुस्तक आपको सही ज्ञान देता है, ऐसे किताबें शास्त्र पढ़ने से आपको सही चीजों का सही मायने में ज्ञान होता है। और जो ज्ञान होता है तो फिर अभांति, पढ़ना पढ़ाना ये सभी का धर्म होना चाहिए। वो आर्य समाज के आप देखेंगे दूसरे या तीसरे नियम में जो नियम लिखा हुआ है, 10 नियम, उसमें एक होगा सभी आर्यों को वेदों का पढ़ना पढ़ाना। पढ़ो और पढ़ा, जब आप सीख जाओ तो दूसरों को भी सिखाओ, ये बड़ा जरूरी चीज होता है। और उसके स्वाध्याय के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। एक भाग है सत शास्त्राणाम अध्ययनम, अच्छी किताबों का अध्ययन करो, और प्रणव जप, ईश्वर की जप करो, ईश्वर के प्रति भक्ति रखो, ईश्वर के बारे में ठीक से जानो और उसको इंप्लीमेंट करो। शास्त्रों को पढ़ के समझो क्या है, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। तो ये दोनों स्वाध्याय का काम है। आगे आते हैं ईश्वर प्रणिधानानि। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान सिंपल भाषा में, मॉडर्न लैंग्वेज में, जिसको आप भक्ति कहते हैं, मतलब जब आप भगवान के लिए अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते, अपने आप को सौंप देते, ऑफर कर देते कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है तू ही तू है, मैं तुम्हारा हूं। जब आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते उसके शरण में कि जो कुछ भी है वो तुम्हारे कारण है, जो कुछ भी हूं वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कारण है, तो ये जो भाव, ये बोलना नहीं, बोलना तो नौटंकी हो जाती है अगर वो अंदर नहीं आता है। आप बोलते नहीं बोलते वो मायने नहीं रखता, या आप रियलाइज में करता हूं कि नहीं करता हूं, मैं क्या बोलता हूं ये दूसरों के लिए मैटर करता है, पर मैं क्या हूं ये मेरे लिए मैटर करता है। और आध्यात्मिकता दूसरों को मैटर नहीं करता, वो सिर्फ मेरे लिए मेरी बात करता है कि तुम क्या हो। जब मैं ऐसा रियलाइज करूं, ऐसा मैं फीलिंग क्रिएट करूं कि तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे कारण हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे भरोसे से हूं, मेरी जो कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, संपत्ति है, जो कुछ भी मेरे पास है, रूप है, शरीर है, वो तुम्हारे कारण, ये जो फीलिंग है, इसी को हम ईश्वर भक्ति कहते हैं। ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरह के एटमोस्फियर हम पैदा करते हैं, भजन करें, कीर्तन करें, यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, ये सिर्फ आपको एक एटमोस्फियर क्रिएट कराता है। इसका अर्थ नहीं कि आप भजन करने से भक्ति कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कीर्तन करने से ईश्वर, नहीं, ये आपको एक एटमोस्फियर दे रहा है। पर उस एटमोस्फियर से अगर आपका अंदर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे, तो फिर वो हिपोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बंजर जमीन होता है ना, आप कितने बढ़िया उसमें बीज डालिए, खाद डालिए, वो कुछ नहीं होता है। तो कुछ बंजर लोग होते हैं कि कितना पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहें, भक्ति भजन कीर्तन करें, यज्ञ करें, पूजा कुछ भी करें, अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो बंजर जमीन की तरह होते हैं। और बहुत सारे लोग जो बंजर जमीन नहीं है, उपजाऊ है, जिनके अंदर सचमुच वो भाव है, अपने को बदलना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एटमोस्फियर क्रिएट करता है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, और उससे वो उनको आसान होता है अपने अंदर उस ईश्वर को अनुभव करने की, अपने आप को सरेंडर करने की। जब ये पांचों को नियम कहते हैं, दिस फाइव टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेकेंड पार्ट ऑफ द उपासना। पांच यम, पांच नियम, ये बेसिक चीजें हैं ईश्वर भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए। बेसिक इसीलिए है कि जब अगर मेरा कैरेक्टर में बदलाव नहीं आया, इनसाइड और आउटसाइड, एक्सटर्नल और इंटरनल, की उपासना का मार्ग बेकार हो जाता है। सिर्फ पतंजलि के जो आठ उपासना के या योग के जो की अपरिग्रह की, फिर नियमों का पालन करे, जो अभी शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट स्टेप है आसन। आसन जो आप आजकल योगा एक्सरसाइज करते हैं, वही आसन है। आसन का रियल मीनिंग होता है कि बॉडी को, बॉडी की जो पोजीशन है, जब वो स्टेडी और कंफर्टेबल हो, उसके लिए जो कुछ किया जाए उसी को आसन कहते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, एक्सरसाइज करना पड़ता है, और वो एक्सरसाइज का एक प्रॉपर वे है। जनरली जो आप कहेंगे क्या फर्क है, जो योग की एक्सरसाइज है जिसको हम आसन कहते हैं, और जो जिम में या जो बाकी एक्सरसाइज है, उसमें अंतर क्या है? अंतर यह होता है कि योग आसन का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो है कि आपका हर अंग सिर्फ एक्टिव ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ना आए, स्वस्थ होना भी जरूरी है, स्टेडी हो और फ्लेक्सिबल हो और कंफर्टेबल हो। स्टेडी का मतलब, अगर आपको दो घंटे बैठना पड़े तो कहीं दर्द ना हो, अगर आपको पांच घंटे पढ़ना पड़े तो कहीं आपको ना गर्दन पर, ना आंखों में, ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको 12 घंटे चलना पड़े तो आपको थकावट कम से कम हो। यह फायदा फर्क दिखेगा, जिम जाने का और योगासन करने का यह फर्क होता है। सिर्फ आप फिजिकली एक्टिव होना नहीं होता है, योग का उद्देश्य, योग का जो आसन है, योग में जो तीसरा तीसरा जो कंपोनेंट है जिसको हम आसन कहते हैं, वो आपको शारीरिक रूप से सिर्फ मजबूत नहीं बनाता है, सिर्फ स्वास्थ्य नहीं देता है, हेल्दी नहीं करता, वो आपको स्टेडी भी बनाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे योग की एक्सरसाइज में आपको धीरे लंबे समय तक एक पोज में, शुरू शुरू में तो आपको थोड़े थोड़े समय के लिए करना पड़ता है, उसमें आपको जल्दीबाजी नहीं होती है, आपको एक ही आसन में कोशिश करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके। उसका पर्पस ये नहीं कि आप कितना आप देर तक खड़े हो पाते हैं कि नहीं, कोई जिम्नास्टिक शो नहीं होने वाला है। इसीलिए कि जब आप बॉडी को अलग अलग तरह से मोड़ते हैं, उसको अलग अलग तरह से एक खास वे से जब आप उसको चेंज करते हैं, बेंड करते हैं, सीधा करते हैं सांसों की गति के साथ, वो आपको बॉडी को स्वस्थ तो करता ही है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है, उसको स्टेडी भी लाता है। पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। अब ऐसे एक पोस्चर पर बैठे खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जहां आप लंबे समय तक होने पर भी आपकी स्थिरता स्टेबिलिटी बनी रहती है, सुख आपकी कंफर्टेबिलिटी भी बनी रहती है, उसको अचीव करने के लिए जो कुछ किया जाए उसको आसन कहते हैं। खास करके जो आजकल आप योग एक्सरसाइज करते हैं वो आसन है। इसकी जरूरत क्यों है आध्यात्मिकता में? जरूरी इसीलिए कि आपको भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए आप घंटों, मान लीजिए आपको मन करता है आप मेडिटेशन में बैठे, भक्ति या पूजा में बैठे, तो आपका मन सिर्फ एक ही जगह हो। अगर आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द शुरू होता है, तो फिर आपका मन तो उधर जाएगा। तो बड़ी प्रैक्टिकल चीजें थी कि आप हर तरीके से मन को इतना कॉन्सेंट्रेट करने के अभ्यास करें कि कहीं भी मन आपका इधर उधर भागे नहीं। अष्टांग योग के अगला जो अंग है उसको प्राणायाम कहते हैं। जैसे फिजिकली आपको स्वस्थ होना है, स्टेडी होना है, हेल्दी होना है, कंफर्टेबल होना है, इसी तरह मेंटली भी जब आपको ये तीनों चीजों की जरूरत है, ये फिजिकल और मेंटल इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए आसन और प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो काम है, आप सांसों की गति को, जैसे आसन में आप शरीर को बेंड करते हैं, अलग अलग तरह करते हैं, तो इसी तरह सांसों को रोकने की, सांसों को अलग अलग प्रक्रिया में ढालने की जो प्रक्रिया है इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का सिंपल मीनिंग है प्राणों का आयाम। प्राण तो समझते हैं ब्रीदिंग जो आप करते हैं, वाइटल एयर, उसको लंबे देर तक बनाए रखना, आयाम, लंगिविटी ऑफ योर वाइटल एयर। मान लीजिए एक बार, मान लीजिए आपने सांस लिया कि कभी जरूरत पड़े तो आप एक घंटे तक भी दोबारा सांस लेने की जरूरत ना पड़े, आप रोक सके, बाहर सांस निकल गया आप चाहे तो उसको बाहर रोक सके, दो मिनट हो, दो घंटे हो, आपकी कितनी जरूरत पड़ने पर पूरे के पूरे दिन भर 24 घंटे के लिए भी दोबारा ना ले तो भी आपको कुछ नुकसान ना हो। ये कोई मिरेकल्स नहीं है, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। अब देखिए जो ओलंपिक खेल में जो लोग जिस तरह के भागते हैं, जिस तरह के जिम्नास्टिक करते हैं, वो क्या आप और हम कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। आप दो मिनट सांस रोक सकते हैं, एक मिनट रोक सकते हैं, तो दो घंटे भी रोक सकते हैं, दो दिन भी रोक सकते हैं, दो महीने भी रोक सकते हैं, प्रैक्टिस है, आप उसको बढ़ाइए। आपको पता है आपका बॉडी आपके साथ देने के लिए हमेशा तैयार है, आप इसको जैसा ढालना चाहे डालिए, आप इसको बिगा, आप चाहते हैं कि इस बॉडी के सारा उसको बीमार कर दीजिए, वो दो मिनट में बीमार होने को तैयार है। आप जैसा ढालें, आप पूरे शरीर को विषैला बना सकते हैं, पता है, पॉइजनियस बना सकते हैं। पहले जो राजा लोग होते थे आजकल की तरह इतनी डेमोक्रेसी और इतना तो नहीं, वो घर के अंदर दुश्मन ज्यादा होते थे, क्योंकि राजा लोग बहुत सारे शादियां करते थे, 8, 10, 20, 50 शादियां कर लेते थे, तो उनके बच्चे होते थे, राजा एक को बनना है, तो बड़ा कंस्पिरेसी चलती रहती, राजा को मारो वो मारो, तो हमेशा तो उनके लिए एक उनको बचाव के लिए बहुत सारे रूल होता था। तो उनके जो प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे तरह के जो जो रास्ते होते थे, उसमें एक होता था कि अब बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर उनको खाना पड़ता था। बहुत सारे राजा की प्रैक्टिस थी, अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा आती है, विष कन्याएं पालती थी। उसका क्या मतलब है कि बचपन से बिल्कुल इतनी छोटी सी हिस्सा जो उसको ज्यादा फर्क ना पड़े, जैसे ड्रग देते हैं इतना दो उसको, वो उसका बॉडी में कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, और धीरे 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 उसको डोज बढ़ाते थे, बड़ा होने पर वो बड़े से बड़े पॉइजन भी पी ले तो उसको असर नहीं होगा, पर उसके साथ अगर इसका खून अगर किसी को लग जाए उसकी मौत हो जाती थी। आज भी होते हैं बड़े बड़े जो ड्रगिस्ट होते हैं, जो बहुत ड्रग की आदत होती है। हमने दिल्ली में थे तो हमने देखा, मेरठ में एक आदमी था, उसके बारे में सुना कि वो रोज सांपों से डसवाता है, क्योंकि अब वो इतना बॉडी उसका हैबिचुअल हो गया कि अब ड्रग उसको असर नहीं करता, महंगे से महंगे ड्रग, अब वो पॉइजन लेकर के थोड़ा उसको शांति मिलती है। आपका मेरा कहने का मतलब है, आपका शरीर सब कुछ करने को, सब कुछ अडॉप्ट करने को तैयार है। ये कोई मिरेकल नहीं है कि अगर आप सुनते हैं कि आप 2 घंटे सांस रोक कर बैठ जाएंगे कोई अन नहीं करने की, इसीलिए प्रैक्टिस करना होता है। प्राणायाम से प्राण को हम अपने कंट्रोल में रख सकें, उसका जो शरीर पर मन पर जो प्रभाव पड़ेगा, शरीर और मन को हेल्दी करना, स्टेडी बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, वो सब तो साइड इफेक्ट है, और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट आजकल के जमाने में जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे और रिसर्च होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगे, तो ऐसे ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस की सप्लीमेंटरी के रूप में अब धीरे धीरे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन स्थान लेने लग गए। पता नहीं 15-20 साल के बाद ये बिल्कुल उसके साथ मर्ज ना हो जाए, कि पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का पार्ट ना हो जाए कि ये मेडिटेशन, प्राणायाम और आसन रोक कर ले जरूरी है। पर ये उसकी साइड इफेक्ट से इतना इफेक्टिव है, पर इसका जो गोल था, उद्देश्य है कि जब आप भक्ति में बैठे ईश्वर की प्राप्ति, हमारे यहां जो भी साइंस टेक्नोलॉजी एंशियंट इंडिया में जो कुछ भी बना शुरू हुआ, उसका एक ही उद्देश्य था जी, ईश्वर प्राप्ति में सहायता बने। यही फर्क है मॉडर्न साइंस में, वेस्टर्न कंसेप्ट में और ईस्टर्न कंसेप्ट में। इसीलिए हम साइंस में बहुत डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि इसलिए नहीं कि हमारे पास टैलेंटेड ऋषि नहीं थे, इसीलिए कि हमने उसका यूज सिर्फ अंदर की यात्रा के लिए किया, हम बाहरी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। उल्टा हम तो कहते थे गर्मी सहने की आदत डालो, सर्दी सहने की आदत डालो। मॉडर्न ऋषियों ने, वेस्टर्न ऋषियों ने उसको शारीरिक सुख के लिए, भोग के लिए यूज किया, यही फर्क है और कुछ नहीं। तो प्राणायाम से प्राणों को नियंत्रित करते हैं, और आगे जाकर के कि वो जो अब जब हम ध्यान में, भक्ति में लंबे समय तक ईश्वर भक्ति में बैठे तो वो सहायक बने। अगला है प्रत्याहार, पांचवा है। प्रत्याहार का अर्थ होता है, अष्टांग योग के जो वो पांचवा हिस्सा है, प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया से खींच के अंदर की ओर लाना। खींच के मतलब, मान लीजिए आपका मन करता है कि मैं ये देखूं, अपने आप को कन्विंस कराना कि नहीं मुझे ये नहीं देखना। मन करता है कि मैं 3 घंटे टीवी देखूं, अपने आप को कन्विंस कराना कि मुझे टीवी नहीं देखना। मन करता है कि मैं ये खाऊं, अपने आप को ये कन्विंस कराना है कि मुझे नहीं खाना। कन्विंस कराना पड़ता है, जबरदस्ती खींचेंगे तो वो बड़ा रिवोल्ट, बॉडी भी बिल्कुल रिवोल्ट करता है। इसीलिए बच्चों को जो बिना समझाए आप हम उन पर थोपते हैं, तो जैसे ही वो बड़े होते हैं, टीनेजर होते हैं, वो सारा उल्टा जो आप कहोगे उसका 3 गुना उल्टा करेंगे। आपने कहा कि चलो डिनर करो, मैं करना नहीं है, मुझे भूख हो तब भी नहीं करने वाले आप। आप उनको कहो कि बाहर रोज खाया करो, अब देखिए घर में खाने लगेंगे, रिवोल्ट उनका वो हो जाते, क्योंकि आज तक आपने दबा के रखा। पर जो माँ बाप उनको समझाते हैं, ये इसीलिए रोका मना किया जाता है, ये इसीलिए हाँ किया जाता है, वो उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, उनको जो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर उनको बुरा लगना तो ठीक है, इंस्टेंटली कोई चीज अच्छा या बुरा नहीं लगता, अलग बात है, पर आगे जाकर के मां बाप के प्रति उनके अंदर वो द्रोह भाव नहीं रहता है। इसी तरह जब हम मानसिक रूप से अपनी इंद्रियों को रोकने की कोशिश करें, इंद्रियों को मन से रोकने की कोशिश करें, ना कि जबरदस्त नहीं चीनी नहीं खाना, बस डॉक्टर ने कहा नहीं खाना है। अगर आपको कभी चीनी छोड़ना पड़े तो आप मन को कन्विंस करा दीजिए कि चीनी खाना क्यों पूजा इतना स्वाद है, इतना पड़िए आपको।